لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. عزیزان محترم، اہل بیت کرام کی خدمت میں زیارت تعزیت کے یہ الفاظ پڑھ کر اہل بیت کرام کو تعزیت پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا رسول اللہ، أحسن الله لك الأزا في ولدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك الأزا في ولدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين عليه السلام. عزیزان محترم، شب یکم محرم سے سلسلہ عزا کا جو یہ عزاداری کا سلسلہ اس مقام پہ جاری تھا، آج کی شب میں آ کے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. حسین پہ رونے والوں، جب ایک مرتبہ صادق آل محمد سے راوی نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ مولا، یہ محرم کی جب پہلی چاند نمودار ہوا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ صف عزا کو کیوں بچھا دیا کرتے ہیں؟ راوی جو پوچھنا چاہتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ راوی نے سوال بھی کیا کہ شہادت تو عاشور کے دن ہوئی تھی، मगर क्या वजह है कि आप पहली मुहर्रम से सफ़े अज़ा को बिछा देते हैं, सोग और अज़ादारी का सिलसिला जारी करते हैं? तो सुनोगे अजीज़ो, एक मरतबा इमाम ने जवाब दिया था, इज़ा हल्ला हिलालुल मुहर्रम नशरतिल मलाइकतु सौबल हुसैन अलस्समा, फरमाया कि जब आसमान पर मुहर्रम की पहली चांद नमूदार हुआ करती है तो बस उस वक्त फरिश्ते आसमान पर हुसैन के उस लिबास को नशर कर दिया करते हैं जो तीरों तलवारों से फटा होता है, जिस पर कहीं से तलवार का पेचीरा लगा है, कहीं पर उसे तीरों ने जख्मी किया है, कहीं उस पर खंजर के निशान है, बस उसी वक्त से आसमान पर खून हुसैन की खुशबू फैल जाया करती है, जिसे हम अपनी बसारत से देखा करते हैं, हमारे चाहने वाले अपनी बसीरत से देखा करते हैं। बस अजीजों, यही वजह है कि रैयान इब्ने शबीब से आठवें इमाम फरमाया करते थे, इन कुंता बाकी ले शैइन फबकी अल हुसैन, अरे ए रैयान, अगर किसी भी चीज पे रोना चाहो तो हुसैन की मुसीबत पे रो। फरमाया इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबश, अरे हमारे जद हुसैन को ऐसे ज़िबह किया गया जैसे गोसवंद को ज़िबह किया जाता है, जैसे गोसवंद को ज़िबह करते वक्त कोई रोकने वाला नहीं, अरे 30,000 के नरगए आदम है, ऐसे हमारे जद को कोई तीर से जख्मी करता था, कोई पत्थर मारता था, कोई खंजर मारता था, कोई नेजा मारता था, मगर कोई रोकने वाला नहीं था। ऐसा लगता है जैसे गोसबंद को ज़िबह करना जायज था, वैसे हमारे जद को ज़िबह किया गया। का फकत हमारे जद को ज़िबह नहीं किया गया, हमारे जद के साथ 18 ऐसे बेनजीरों बेमिसेल बनी हाशिम के जबानों को ज़िबह किया गया, रोए अर्ज पर जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती थी। अजीजों, बस वो आशूर की शब आ गई, जब कल आशूर का दिन नमूदार होगा, तुम्हें मालूम है ना कि ये वो दिन होगा कि उम्मे सलमा रिवायत करती है कि अल्लाह का रसूल एक दिन थका हुआ सख्त गर्मी का दिन था मेरे घर में दाखिल हुआ, मैंने चटाई को बिछा दिया, अल्लाह का रसूल चटाई पर लेट गया, आराम कर रहा था कि कुछ देर बाद हुसैन एक मरतबा अल्लाह के रसूल का छोटा नवासा घर में दाखिल हुआ, आवाज आई दरवाजे के पीछे से, इमाम को एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, आओ मेरे हुसैन मेरे सीने पर आकर सो जाओ। कहा, मैंने एक मरतबा दरवाजे की आर से देखा, हुसैन चलते हुए गया अपने नाना के सीने पर जाकर सो गया। कुछ देर बाद गिरिए की आवाज बुलंद हुई, मैं घबरा गई कि शायद हुसैन ने मेरे शोहर को मेरे अल्लाह के रसूल को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, मगर जब मैंने दरवाजे की आर से देखा हुसैन मेरे शोहर के अल्लाह के रसूल के सीने पर है, और अल्लाह के रसूल कभी लबों को बोसा देते हैं, कभी गर्दन को बोसा देते, धाड़े मार कर रो रहे। एक मर्तबा मैंने दाखिल होने के बाद कहा, या अल्लाह के रसूल, क्या हो गया, क्या हुसैन ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई? कहा, नहीं उम्मे सलमा, कुछ देर तक हुसैन मेरे सीने पे खेलते रहा, ऐसे में जिब्राइल एक मर्तबा आए, और आने के बाद जिब्राइल ने मुझे खबर दी, कहा कि मुहर्रम की 10वीं होगी, मेरी उम्मत से ताल्लुक रखने वाले चंद जालिम मेरे हुसैन को करबला के मैदान में घेर कर भूखा और प्यासा हुसैन को हुसैन के साथियों के साथ ज़िबह कर देंगे, और इसके बाद ये खाक लाकर मुझे जिब्राइल ने दी। कहो उम्मे सलमा, इस खाक को खूब संभालो, जब मेरे हुसैन के पास शदीद मुसीबत का वक्त आएगा इस खाक पे निगाह रखना, जब ये खाक खून से तब्दील हो जाए समझ जाना मेरे हुसैन को करबला में ज़िबह कर दिया गया। उम्मे सलमा कहती कि मैंने खाक को शीशी में महफूज किया, दिन गुजरते गए, 50 साल गुजर गए, बस वो वक्त भी आ गया कि जब हुसैन अपने साथियों के साथ मदीने से रुखसत होने को है, एक एक करके हुसैन की सवारी तैयार हो रही है, अब जब हुसैन अपने खानदान के बुजुर्गों से रुखसत होने के लिए आए, तो एक मरतबा जनाब उम्मे सलमा से नानी थी ना रिश्ते में रुखसत होने के लिए आए, कहा बेटा हुसैन कहाँ जाने का इरादा है, इराक तो नहीं जा रहा? कहा नानी, मैं इराक की जानिब जा रहा हूँ। कहा बेटा, इराक का सफर तेरे लिए बहुत ना मौजू और ना मुनासिब है, इसलिए कि मैंने तेरे नाना से सुना था कि जब मेरा बेटा इराक जाएगा मेरी उम्मत उसे कौम जफाकार शहीद करेगी। कहा नानी, जब आपने रसूल खुदा से सुन लिया तो जैसा सुना वैसा होने को है, अगर आप देखना चाहती है तो मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ। एक मरतबा हुसैन ने इशारा किया, जमीन से
سمٹتی گئی، زمین کربلا بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف چند خیمے لگے ہیں، کچھ بیبیاں ہیں، ایک مقتل میں کچھ کٹے ہوئے لاشیں۔ کہا نانی اماں یہ دیکھ رہی ہے، یہ میرے اکبر کا لاشا ہے، یہ جو سینے میں زخم نظر آ رہا ہے، میرا اکبر ٹوٹی ہوئی برچھی کا پھل کھا کے زمین کربلا پہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لاشا نظر آیا، سن سکو گے حسین پہ رونے والوں، وہ بغیر شانوں کا لاشا تھا، فرات کے کنارے پڑا ہوا تھا، ہزاروں تیروں کے درمیان الجھا وہ لاشا تھا۔ کہ نانی سے پہچانا، یہ آپ کا عباس ہے جو شانوں کو کٹا ہے، فرات کے کنارے سو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مقتل میں دکھایا، کچھ لاشوں کے ٹکڑے تھے جو بکھرے ہوئے تھے۔ کہ نانی سے پہچانا، یہ آپ کے قاسم کا لاشا ہے جو زندگی میں گھوڑوں تلے پامال ہو گیا۔ پھر ایک ایسا بھی نظر آیا جو زین و زمین کے درمیان گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہا، اور ایک مرتبہ زمین پر یوں گرا کہ تیروں پر الجھاوا جس کا جسد موجود ہے۔ کہ نانی سے دیکھا، کہ دیکھا تو نہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ یہ آپ کا حسین ہے جو زمین کربلا پہ ہزاروں تیروں کو جس میں لیے ہوئے زمین پر یوں موجود ہے کہ زمین پر حسین کا جسد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نانی سے رخصت ہوئے، نانی کہتی ہے کہ عاشور کا دن آ گیا، میں دوپہر کو سوئی بھی تھی، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کا رسول آیا ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہے، بس یہی روزے عاشور کی نسبت ہونی چاہیے۔ میرا مولا امام صادق کہتا ہے آستینیں الٹ کر، گریبان کھول کر، بال بکھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ دیکھو تمہیں حسین کی غربت میں، حسین کی مصیبت میں کھانا پینا نہیں ہے، عاشور کے دن مصیبت میں حسین کی عزاداری میں گزارنا ہے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں، جو کوئی ہمارے جد کی مصیبت میں اپنے گھر میں کھانا پینا جمع نہیں کرتا، قیامت کے دیر ہمارے جد رسول کی جانب سے جزا حاصل کرے گا۔ بس ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا، آستینیں الٹی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے سر کے بال اور داڑھی خاک آلود ہے۔ میں نے پوچھا، میرے والی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کہا آج کی رات جو آپ بیٹھ کر حسین کے مسائل سن رہے، فرمایا آج کی رات پوری رات میں کربلا میں کربو قبروں کے کھودنے میں لگا تھا، جو یہ قبریں میں نے اپنے حسین کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے تیار کی۔ ام سلمہ، یہ عصر کا وقت، میرا حسین کربلا میں ذبح ہو گیا، یہ جو خون دیکھ رہی ہو میرے چہرے پہ، یہ میرے حسین کا خون ہے۔ اب ایک نا ام سلمہ گھبرا کر اٹھتی ہے، اور ایک مرتبہ جا کر اس مقام پر کہ جہاں ام سلمہ نے وہ شیشی رکھی تھی، جس شیکی میں وہ خاک موجود تھی جو اللہ کے رسول نے امانت رکھوائی تھی، دیکھا وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی، خون حسین جوش مار رہا ہے۔ ام سلمہ نے ایک مرتبہ اپنے بالوں کو بکھیر دیا اور کہنا شروع کیا، وا محمدا وا علیا وا حسینا۔ بس عزیزو، یہ عاشور کا دن آ گیا جس کے آغاز کو علی اکبر کی صدا سے ایک مرتبہ سجایا گیا۔ بس ایک بار حسین نے حجت تمام کی، عمر ابن سعد کی جانب سے تیر روانہ ہوئے، عمر ابن سعد کے پیچھے 4000 تیر چلے، حسین کے 25 ساتھی شہید ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ حسین نے کہا عربوں کے انداز سے، ایک ایک کر کے عمر ابن سعد لڑنے کے لیے سپاہیوں کو بلواؤ۔ اب جو حسین کے ایک ایک ساتھی گئے، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا، کبھی مسلم ابن اسجا کا لاشا آیا، اور ایک مرتبہ ہلال ابن نافع کا لاشا آیا۔ سنتے عزیزو، یہ ہلال کون ہے؟ عاشور کی شب تھی، حسین نے جب ایک مرتبہ امتحان لے لیا، سب ساتھی اپنے اپنے خیمے میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات کی تنہائی میں ہلال کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا کسی سمت تنہائی میں جا رہے، مجھے خوف آیا، میں اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا کہ کچھ دیر جانے کے بعد جب سناٹا چھا گیا، میرے قدموں کی چاک صحرا میں یوں گونجی کہ حسین نے پلٹ کے پوچھا، کون؟ کہا آپ کا گلال ہلال ابن نافع ہوں۔ کہا ہلال، میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا، حالات اچھے نہیں ہے، دل میں ہول اٹھتا ہے، کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہا ہلال میرے قریب آ جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ہلال कितना मुझ पर यकीन रखते हो, कितना मुझ पर भरोसा रखते हो। एक मर्तबा कहा मौला आप पर भरोसा नहीं तो कायनात में फिर किस पे भरोसा होगा। एक मर्तबा कहा अगर मैं कुछ कहूँ तो मानोगे। हिलाल ने कहा आका मैं जान देने को तैयार हूँ। कहा हिलाल रात का अंधेरा है, इस पहाड़ी के पीछे कोई देखने वाला नहीं है, मैं भी मुंह इधर करके खड़ा हो जाता हूँ, तू यहाँ से निकल जा ताकि हिलाल तू जवान है अपनी जिंदगी बचा ले। हिलाल कहते हैं मेरे टांगों में हिम्मत न रही, जिसम में लर्जा तारी हो गया, मैं जमीन करबला में गिर गया, अपने सर को हुसैन के कदमों में रखकर हाथों को जो करका मौला क्या कुछ हक के वफादारी में कमी हो गई है, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि कल रोज शहादत आप पर अपनी जान कुर्बान करूँ। एक मरतबा हुसैन ने हिलाल को उठाया, दुआए खैर दी, अपने सीने से लगाया। कहा हिलाल ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तेरे बच्चे हुसैन के बच्चों की तरह यतीम ना हो जाए। हिलाल ने एक मरतबा जो कर कहा हिलाल के बच्चे जरूर यतीम होंगे मगर यतीम आले मोहम्मद से वो बेहतर नहीं है। एक मरतबा हिलाल की वफादारी को महसूस करने के बाद हुसैन ने कहा एक मरतबा हिलाल ये वो मकाम है जहां हबीब इब्ने मज़ाहिर गिरेगा, ये वो मकाम है कि जहां मुस्लिम इब्ने औसजा गिरेगा, ये वो मकाम है कि जहां मेरा बेटा अकबर गिरेगा। एक ऐसा मकाम नशेब में नजर आया जो अलग ही अंदाज से साफ हुआ हुआ था। हिलाल ने पूछा मौला ये कौन सा मकाम है? एक बार हुसैन की आंखों से आंसू रवा हो गए। हिलाल ये जो मकाम देख रहे हो ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने रात की तारीकी में अपने हाथों से कांटों को पत्थरों को चुनकर साफ करके तैयार किया है। कल इसी मकाम पर मैं जुलजना से जमीन करबला पे गिरूंगा। हाजादारो हिलाल भी कल शहीद हो गए और अब वो वक्त आया कि हुसैन के अपने अजीजों की बारी आए। हुसैन का अली अकबर मारा गया, अब हुसैन की आंखों में नूर बाकी ना रहा, आपका मौला आंखों की बिनाई से महरूम हो गया। और जब अब्बास शहीद हुए हुसैन की कमर खमीदा हो गई, अब हुसैन की कमर शिकस्ता है, मेरा मौला यको तन्हा है। एक मर्तबा बुलंदी पर जाता है फनजर या हसन इला यमीन व शिमाल। हुसैन ने एक मर्तबा दाएं देखा, हुसैन ने एक मर्तबा बाएं देखा और सदाए गुरबत को बुलंद किया। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुजीरिन युजीरुना। है कोई जो हुसैन की आवाज पे लबैक कहे? है कोई जो हमें आले मोहम्मद के घराने को पना दे? है कोई जो हमारे इस्तगासा पे लबैक कहे? ये सदाए गुरबत को बुलंद करना था। खयाम हुसैनी से सदाए गिरिया बुलंद हुई। हुसैन टीले से जमीन पर आए और आने के बाद एक मर्तबा जैनब को पुकार के कहा क्या वजह है जैनब के सदाए गिरिया बुलंद है? अभी तुम्हारा हुसैन जिंदा है। कहा जैसे ही आपने सदाए गुरबत बुलंद की वैसे अकबर ने झूले से खुद को गिरा दिया। एक मर्तबा असगर को भी लिया लेकर गए फौजी अश्किया के सामने और सुनोगे इस वक्त में हुसैन ने तुम्हें बहुत याद किया। फरमाया शियती लैतकुम फी यौमिन आशुरा, ऐ मेरे शियो काश तुम करबला के मैदान में होते तो ये देखते कैफा तसली की तिफले, कैसे मैं अपने शशमाए के लिए पानी का सवाल कर रहा था, पानी तो ना दिया, तीन बार का तीर रवाना हुआ, बच्चा बाप की गोद में पलट गया। हुसैन ने असगर को आसमान की जानिब बुलंद करके कहा रिजन में कजाई व तस्लीम अमरे, मुझे नहीं मालूम किस दिल से हुसैन ने ले जाकर रुबाब के बच्चे को दिखाया मगर अब हुसैन में बर्दाश्त नहीं रही। हुसैन ने शायद सोचा होगा कि जब कल जुबह आशूर गुजरने के बाद रो असरे आशूर गुजरने के बाद सरों को गिना जाएगा, हर सर को गिनने के बाद एक सर गिनती में कम नजर आएगा, कहेंगे कि कौन सा सर कम है। कहा ये हुसैन के नन्हे शशमाए अली असगर का सर है। एक मर्तबा उमर इब्ने साद हुक्म देगा शिमरे लईन 20 नेजा सवारों के साथ खमीने करबला के ऊपर नेजे को मारना शुरू करेगा। किसी ने कहा मैंने हुसैन को देखा था खेमे की पुश के अंदर, हुसैन असगर की शहादत के बाद गए थे, अब जो पुश्ते खेमा पर नेजे 20 नेजे जमीन करबला पे लगे और नेजे बुलंद हुए। असगर दूसरी मरतबा शहीद हुआ, लाशिया गुजर नेजों पे बुलंद हो गई। हुसैन एक मरतबा असगर को कभी पुश्त खेमा पर जो दफनाया ना, तो दफनाने के बाद रावी लिखता है कि हुसैन खेमे के बाहर आकर बैठ गए। अब खेमे में बैठने की हिम्मत नहीं थी, एक कोने से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। हुसैन के जो अपने जानों पे सर रखे बैठे थे एक बार सर को उठाते हैं और जवाब देते हैं, अलैका सलाम, इस गुरबत में कौन है कि जिसने हमें लाइक सलाम सुना। तो सुनोगे अजीजो ये कौन था, काना बरीदो फिजा, मैं फिजा का कासिद हूँ। हुसैन की एक गरीब बेटी मदीने में भी इंतजार कर रही थी, रोज मदीने से बाहर उसी मकाम पर बैठा करती थी जहां से मदीने इराक से आने वाले काफले होते थे। और जब एक मर्तबा फिजा से रहा ना गया तो फिजा ने खत लिखा, ये खत कासिद लेकर उस वक्त पहुंचा कि जब अकबर शहीद हो चुके, कासिम मारे जा चुके, असगर भी शहीद हो गए। एक मर्तबा खत को खोला, खत में लिखा था, मैं फातिमत सुगरा इला अवताई हुसैन इब्ने अली, ये जसवा खत है फिजा के जानिब से बाबा हुसैन इब्ने अली के लिए। इस खत में एक जुमला लिखा था कि जब आप असगर को मेरी खत को देखिएगा तो असगर की खबर मुझे भेजिएगा। असगर बहुत प्यारा था फिजा को, मगर अब हुसैन जवाब दे तो क्या जवाब दे। अल्लामा तालिब जोहरी अपनी किताब हदीसे करबला में लिखते हैं, हुसैन ने कुछ जवाब ना दिया, कासिद को लेके कब्र असगर पे गए, उसके हाथ को कब्र असगर पे रख दिया, कहा ये जवाब जाकर सुगरा को दे देना। बस एक मर्तबा आपका मौला जो तन्हाई में आ गया, अब कोई ना रहा हुसैन की फौज में, एक बार कहा, फिजा माँ की कनीज जाओ जाकर उस संदूक को खोलो कि जिस संदूक के अंदर माँ ने मेरे लिए कुर्ता तैयार करके रखा है, लेकिन खबरदार जैनब को खबर ना होने पाए। फिजा एक मर्तबा खामोशी के साथ छुपती छुपाती हुसैन के खेमे के हिस्से में गए कि जहाँ वो पुराना सा संदूक था जिसमें तबरुकात मौजूद थे, एक छोटा सा कुर्ता लेकर हुसैन की खिदमत में आने के लिए कुर्ते को अपने अबा के दामन में छुपाया हुआ था। जैसे ही एक मर्तबा फिजा खेमे हुसैन से निकली, जैनब की निगाह फिजा की जानी पड़ी, कहा फिजा क्या लेकर जा रही हो। फिजा ने कोई जवाब ना दिया, कहा माँ की कनीज फिजा क्या लेकर जा रही हो, एक मर्तबा को जवाब ना दिया। जैनब को जलाल आ गया, कहा तुम्हें मेरी माँ फातिमा जहरा की हक की कसम, फिजा तुम्हारे हाथ में क्या है। एक मर्तबा फिजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, कहा मौला का यह हुक्म था, ये कुर्ता लेकर जा रही हो। जैनब ने कहा ऐ फिजा ये कुर्ता नहीं है, ये मेरे भाई हुसैन का कफन है। माँ इस कुर्ते को सीते जाती थी और रोते जाती थी कि जब मेरे बेटे हुसैन का आखिरी वक्त आ जाए। जैनब इस कुर्ते को हुसैन को पहना देना, एक मर्तबा का फिजा लाओ इस कुर्ते को मुझे दो, मैं अपने भाई को खुद पहनाऊंगी। लेकर चली हुसैन की जानिब। अब जब हुसैन की निगाहों ने फिजा को नफजा के बजाय जैनब को देखा, जैनब करीब आई, कहा हुसैन माँ की वसीयत थी इस कुर्ते को मैं खुद पहनाऊंगी, माँ की वसीयत पे अमल किया। हुसैन ने कहा एक वसीयत मुझे भी थी, जैनब अपनी रिदा को अपने शानों से हटाओ। झुककर हुसैन ने शाने के ऊपर बोसे लिए, कहा ये वो मकाम है मेरी शहादत के बाद इस पे रसन बंधेगी, कहा एक माँ ने मुझे और भी वसीयत की थी। हुसैन अपने कपड़े को अपनी रिदा को एक मरतबा अपनी गर्दन से हटाओ। और एक बार हुसैन अपने झुककर हुसैन की गर्दन पे बोसा दिया, कहा माँ ने कहा था ये जगह है जहां पर कुन खंजर चलेगा। एक मर्तबा जैनब से कहा बीबियों को दो कतारों में जमा करो, बस अब हुसैन रुखसत होने को है। और एक मर्तबा कहा या सुकैना, या फिजा, या फातिमा, या उम्मे कुलसूम, या जैनब और वो बीबियां के जिनके मर्द हमारी मोहब्बत में मारे गए, अलैकुन्ना मिन्ना सलाम, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करे। कहते करबला की रोजे आशूर से सुबह आशूर से लेके अब तक की गुर्बत एक तरफ, हुसैन की रुखसत की गुर्बत एक तरफ, इसलिए कि जब कोई भी मारा गया खैमे में हुसैन मौजूद है। अब वो जा रहा है जिसके बाद खैमे में कोई ना रहेगा सिवाय वीराने की, करबला में कुछ मौजूद ना होगा। एक मर्तबा हुसैन रुखसत होने गए, जैनब ने कहा महलन महलन याखी, आहिस्ते आहिस्ते हुसैन। जैनब दी भर के अपने भाई को नजर भर भर के देख ले। अब हुसैन एक मर्तबा अपनी सवारी की जानिब बढ़े बहुत मायूस आला निगाह से। हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, कभी अकबर आके रिकाबों को संभालते थे, कभी अब्बास आके शानों को पकड़ते थे, कभी कासिम आकर बाप ने चचा को सवार कराते थे, मगर अब कोई ना था। फरमाया आईना आईना अखिल अब्बास, आईना आईना, अरे कहाँ हो अली अकबर, कहाँ हो मेरे भाई अब्बास, क्या हुसैन को सवार नहीं कराओगे। एक जानिब से आवाज आई, भाई तू तन्हा नहीं है, जैनब तुझे सवार कराएगी। एक मर्तबा जैनब ने सहारा दिया, हुसैन सवार हुए, अपनी सवारी को कहा जुलजना अब ये आखिरी आखिरी मुसीबत है तुम्हारे लिए, ये आखिरी साथ है तुझे देना है, मुझे पता है कि तू भी थक चुका है। जुलजना को आगे बढ़ाना चाहा, मगर जुलजना न बढ़ा। सुनोगे अजीजो, जुलजना से कहा लगता है तू भी थक गया, मगर अब मैं तुझे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। जुलजना ने एक मर्तबा अपनी खामोशी के साथ जमीन करबला में अपनी सुमो की तरफ इशारा किया, बस हुसैन पे रहने वालों तुम्हारे गिरिए की आवाज बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि ये वो मंजर है जिसे हुसैन देखकर भी बर्दाश्त ना कर पाए। एक चार साल की सकीना है घोड़ों की सुमो से लिपट गई और ये कहती थी अरे जुलजना मेरे बाबा को मक्तल की तरफ मत ले जा, जो भी करबला गए मक्तल की तरफ गया वापिस नहीं आया। हुसैन सवारी से नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद सकीना को उठाया अपने सीने से लगाया, कब बाबा को इजाजत दे, कब बाबा आप करबला आप मक्तल की जानिब मत जाए। हुसैन एक मर्तबा कहने लगे बेटा बाबा को इजाजत दे, शायद तेरे लिए पानी ले आए। का चचा अब्बास भी ये कहकर गए थे वापिस नहीं आए, सकीना को पानी नहीं बाबा चाहिए। एक मर्तबा जमीने करबला पे हुसैन लेट गए, सकीना को अपने सीने पे सुलाया, बाप के सीने पे सोने वाली थी ना, एक मर्तबा आंख लग गई, कुछ देर बाद घबरा के उठी, कहा बाबा मैंने आपको इजाजत दी, जाइए मक्तल की तरफ जाइए। कहा सकीना ऐसा क्या देखा, कहा मैंने ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा को देखा, कहा मेरे हुसैन को इजाजत दे, हम उसका इंतजार कर रहे, अब मजीद देर बर्दाश्त नहीं होती। एक मर्तबा हुसैन सवार हुए और एक बार लश्कर आदा के सामने जाकर कहा आज तीनों को उलट कर अब भूखे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसके हाथ में उसके चश्माहे को मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसके कड़ियल जवाब बेटे के सीने पे बर्छी मारी गई, अब उसकी जंग देखो जिसका कासिम पारा पारा हो गया। ये कहकर हुसैन ने मैमना पे हमला किया, मैमना को पलटाया, मैसरा को हमला किया, मैसरा को पलटाया, कल्बे लश्कर पे हमला किया, लश्कर इस तरह से भाग रहा था जैसे भूखे शेर के सामने गोसफंदों का रेवड़ भागता हो। एक मर्तबा हुसैन लड़ते लड़ते फुरात के किनारे पहुंच गए और एक मर्तबा अपने जुलजना को कहा पानी के अंदर डालने के बाद अंता आतशान व नहनो आतशान, मैं भी प्यासा हूं तू भी प्यासा है, मगर पहले तू पानी पे इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। जुलजना ने एक मर्तबा पानी की जानिब निगाह तो की, मगर एक मर्तबा पानी ना पिया, वफादार था ना हुसैन का, कहा जब तक आका अपना पानी पिएंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। हुसैन ने झुककर चिल्लू में पानी लेना चाहा, एक जालिम ने तीर छोड़ा हुसैन की पेशानी पे आके लगा, खून का फव्वारा छूटा, हुसैन के हाथ में मौजूद पानी खून से रंगीन हो गया। हुसैन ने आसमान की जानिब निगाह करके शिकवा किया और एक जानिब से आवाज आई हुसैन तुम पानी पी रहे हो, खेमे की जानिब लश्कर ने हमला कर दिया। हुसैन अपनी सवारी को दौड़ाते हुए पहुंचे तो खेमों को महफूज रख देखा, एक मर्तबा फिर रुखसत हुए और एक बार फिर लड़ते लड़ते हातिफ गैबी से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जे इला रब्बिका राजियत मर्जिया, ऐ हुसैन कब तक लड़ेगा, तेरे रब की जानिब से तुझे बुलावा आ चुका है। नियाम में तलवार डाली, एक मर्तबा दौड़ता हुआ लश्कर चार हिस्सों में तकसीम हुआ, एक लश्कर के हाथ में पत्थर थे, किसी के हाथ में तीर थे, किसी के हाथ में नेजे थे, किसी के हाथ में तलवारें थी, चारों तरफ से हुसैन पर हमले हुए। मेरा मौला इतना जख्मी हुआ कि तीर इस अंदाज से हुसैन के जिस्म में पैवस्त थे कि बदन नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ तीर नजर आ रहे थे। और जब बाहर हुसैन एक मर्तबा जुलजना के ऊपर डोल रहे थे, जमीन पर नहीं गिर रहे थे, हसीनी ابن نمیر نے ایک نیزہ مارا, پہلو ہے حسین میں لگا, میرا مولا زمین کربلا پر آیا, زیارت ناحیہ میں زمانے کے امام پکارے, سلام ہو میرے جد پر جس کا جسد نہ زمین پر تھا نہ زمین زین کے اوپر تھا. میں کہوں گا مولا پھر آپ کے جد کا جسم کہا تھا, کہ تیروں پر معلق میرے جد کا جسم تھا. حسین نے زمین کربلا پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیا, یہ حسین کا آخری سجدہ تھا. لشکر قریب آیا, کسی نے حسین پر تیر مارا, کسی نے گرز مارا, ایک تیر آ کے مقام ہے دل کے مقام پہ لگا. اب حسین میں ہمت رہی ہے, خون بہ چکا ہے, شمر قریب آتا ہے, حسین کے پشت پہ سوار ہو جاتا ہے, حسین کی داڑھی کو ایک مرتبہ پکڑتا ہے اور ایک مرتبہ حسین پلٹ کر دیکھتے ہیں, کیا تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ شمر کہتا ہے میں جانتا ہوں, آپ جگر گوشائی بتول ہے, علی کے فرزند ہیں, رسول کے نواسے ہیں, کیا پھر بھی مجھے قتل کرے گا؟ کہ یزید کی خوشی میں آپ کے نانا کی شفاعت سے عزیز ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ کند خنجر چلنا شروع ہوا, پہلا خنجر چلا زمین کربلا پہ زلزلہ آیا, دوسرا خنجر چلا, تیسرا خنجر چلا, ایک مرتبہ جب سیاہ آندیاں چلنا شروع ہوئی زینب خیمے میں گھبرا گئی, کہا سید سجاد بیٹا یہ کربلا کی زمین پر کیسا زلزلہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں خیمے کے پردے کو اٹھائیے. اب جو خیمے کا پردہ اٹھا, میرا بیمار امام اپنے بستر سے بلند ہو کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھوپھی نے پوچھا بیٹا کیا دیکھتے؟ کہا آپ سنتے نہیں ہیں, جبرائیل کی آواز بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا.
وای حسین کشته شد, 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 وای حسین کشته شد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. شاہ بڑھ گئی بہن کے گلے لگائے, اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے, رو کے کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع، جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، ارے دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا الوداع الوداع الوداع، لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، رو کے بوسے لیے، شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بھر کے کہا الوداع 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 الوداع، وائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ ہائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ شد، وائے حسین کشتہ شد، وائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ شد، وائے حسین کشتہ شد، وائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ شد، ہائے حسین کشتہ شد،